Çok halletmedim.
Elhamdülillahi ve kafa ve selamun ala ibadihillezine istafa amma ba'd. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Radıyallahu anhum ve radu anh. Dalika limen haşiye rabbah. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bakr'ın fil cennah ve Umar'u fil cennah. Ve Osman'u fil cennah ve Ali'yu fil cennah ve Talha'u fil cennah ve Zübeyr'u fil cennah ve Abdurrahman ibn Avf'in fil cennah ve Sa'd'un fil cennah ve Sa'id'un fil cennah ve Ebu Ubeyde ibn-ül Cerrahi fil cennah. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve barik ve sellim. Allahümme arinal hakka hakkan ve rizukna ittiba'a ve arinal batila batilun ve rizukna ictinabah. Rabbana zidna ilma. Bu siyerete sahaba radiyallahu ta'ala anhum ecma'in कि क्लास वैसे तो हम पिछले हफ्ते शुरू कर चुके थे, बाकी क्लासेज आज शुरू हुई हैं दोबारा से रमजान मुबारक के बाद। ये क्लास जो है वो खोबर में हमने पिछले हफ्ते भी कर ली थी, और उसमें क्या किया था जो आपस में बातें कर रहे हैं तो वो तो फिर जवाब नहीं दे सकेंगे, इधर सुनना पड़ेगा जवाब देने के लिए। क्या किया था भाई उमर पिछली क्लास के अंदर? याद है? किसी और को याद है पिछली क्लास के अंदर कौन से वाले सहाबी के बारे में बात हो रही थी? साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हुम के बारे में बात हो रही थी, और ये किस नंबर के साहबी थे ये आपको पता है? 8वें नंबर के ये अशरा मुबशरा सहाबा में से थे। तो 10 है ना, अशरा का मतलब 10 होता है, तो 10 में से ये 8वें थे जिनको हमने पढ़ के लास्ट टाइम मुकम्मल कर लिया। अब जो है वो 9वें सहाबी की बात करनी है। तो या ऑनलाइन भी जवाब दिया था उन्होंने, साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन। अच्छा, तो अगले सहाबी की बात करने से पहले जो आरिफ साहब बात कर रहे थे घोड़े के बारे में, तो वो करने का दिल चाह रहा है कि घोड़े को देखा, बताया उन्होंने कि घोड़े को ऐसे बनाया हुआ होता है। अच्छा, घोड़े के शेख को कभी देखा है किसी ने? घोड़े का शेख देखा है कभी? तांगा देखा है किसी ने? पूछा था ना, तांगा देखा है किसी ने? खाली पंजाब में नहीं होता, कराची में भी बहुत तांगे होते हैं। तो कराची में, लाहौर में, किसी और जगह पे तांगा, बल्कि अभी वहां भी था जी, घोड़े के शेख को देखा है, तांगा देखा है? नहीं, तांगा देखा है। तो तांगे में खाली घोड़ा तो नहीं होता ना, ठीक है, तांगे के अंदर सवारियां भी होती हैं, और सवारी और घोड़े के दरमियान एक शेख साहब भी बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो वो शेख साहब जो होते हैं ना, उन्होंने ये चश्मा नहीं लगाया हुआ होता, उन्होंने ये नहीं लगाया हुआ होता, ठीक है। तो वो फिर घोड़े को ड्राइव कर रहे होते हैं यूं यूं करके, उनकी जो पकड़ी हुई होती है ना लगाम है घोड़े की, वो शेख साहब ने पकड़ी हुई होती है। घोड़े को कहा होता है कि तुम इधर उधर नहीं देखना, तुमने सिर्फ सीधा देखना है, ठीक है। तो हर शेख जो होता है ना, वो ऐसे ही होता है, शेख की आंखें बंद नहीं होती, शेख ने हर तरफ देखना होता है, ठीक है। लेकिन घोड़े को वो क्या कहता है कि तुमने सीधा देखना है, ठीक है। कल हमने यही बात पढ़ी थी, किसी को याद है? कल हमने यही बात पढ़ी थी जुम्मे के बयान के अंदर, क्या थी? जुम्मे के बयान में भी यही बात हुई थी। हाँ, तो जुम्मे का बयान तो था दरस कुरान के ऊपर। तो दरस कुरान में कौन सी आयत थी जिसके अंदर यही बात हो रही थी कि शेख साहब जो है वो अपने मुरीद साहब को कह रहे हैं, हाँ उससे पहले इत्तबिअ मा यूहा इलैहि मिन रब्बिक, ठीक है, कि आप जो है ना वो बस वो करते रहे जिसका कि मैं आपको हुक्म दे रहा हूं, ठीक है, मैं आपको चला रहा हूं ना, मैं आपको ड्राइव कर रहा हूं, ठीक है। तो आप इधर उधर नहीं देखें। आरिद अनिल मुशरिकीन, आरिद अनिल मुशरिकीन का क्या मतलब? ना इधर देखो ना इधर देखो, ठीक है। जो लोग आपकी बात नहीं मान रहे वो कौन है? वो मुशरिकीन है, गुमराह, ठीक। गुमराह, यानी वो सीधे रास्ते पे नहीं चल रहे, इधर भाग रहे हैं, वो इधर भाग रहे हैं, तो आप उनसे एराज कीजिए, आप इधर उधर मत देखिए, ठीक है ना? आप तो अपना काम करते रहिए, और जो आपकी बात मान रहे हैं उनके ऊपर फोकस रखिए, ठीक है? तो शेख कौन है यहाँ पे? इसके अंदर शेख कौन थे? अल्लाह, ठीक है? और मुरीद कौन थे? नबी अल्लाह, अल्लाह के नबी। तो हर शेख जो होता है ना अपने मुरीद को यही कहता है, सीधे रहो, अपना काम करते रहो, ठीक है? तो ये एक मिसाल के तौर पे, घोड़े गाड़ी से भी इसकी मिसाल दी जा सकती है। हजरत जी जो कपड़ा डालते थे ना, वो इसलिए नहीं कि अपने आप को फोकस रखें, हजरत जी के कपड़े डालने का दूसरा मकसद होता था। तो हजरत जी तो वैसे ही फोकस होते थे ना, ठीक है? और वहां पे तो वैसे भी बस गुजर रहे होते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो वो कपड़ा डाल भी लिया, तो उसका मकसद ये नहीं था कि हजरत जी को अपनी निगाहों की फिक्र थी। हजरत जी का मामला अलहमदुल्ला तय हो चुका था, हजरत जी का सलूक तय हो चुका था। अब जो है ना, वो तो मुरीदों को सिखाने के लिए कोई इस किस्म का काम किया तो किया, कपड़ा डाल लिया वगैरह। अच्छा, तो नवे सहाबी अशरा मुबशरा में से कौन है? हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है? अच्छा, इन दोनों के बारे में रजी अल्लाह तआला, सईद और जैद दोनों के बारे में, ठीक है? कैसे? क्योंकि इनके जो वालिद थे ना जैद, वो अगरचे के नबी अलैहिस्सलाम के नबी बनने से पहले ही दुनिया से चले गए थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उनके लिए भी जन्नत की बशारत दी कि मैंने जैद को जन्नत में देखा है, जैदुन फिल जन्ना, ठीक है? तो जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने बशारत दे दी कि वो जन्नती हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनसे राजी है, वरना कोई अल्लाह की रजा के बगैर जन्नत में जा सकता है? अल्लाह ताला राजी ना हो और वो जन्नत में पहुंच गया, भाई जो जन्नत में पहुंच गया इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला उससे राजी हैं। आज इनसे बात हो रही थी बरखुरदार से, ठीक है? तो इन्होंने किताब के टाइटल पे देखा, क्या था नाम उसका? इमाम मेहदी, राइट? इमाम मेहदी। तो इमाम मेहदी के ऊपर क्या लिखा हुआ था उस किताब के टाइटल के ऊपर? रजी अल्लाह ताला, राइट? इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला। अच्छा, किताब भी लिखी हुई किसकी है? एक मुफ्ती साहब की, हमारे अपने हजरत के खलीफा मुफ्ती साहब की, ठीक है? तो अब मुफ्ती साहब ने गलत काम तो नहीं किया, तो रजी अल्लाह तआला तो सिर्फ सहाबी के लिए लिखा जाता है, तो इमाम मेहदी जो है वो कैसे रजी अल्लाह तआला हो गए? वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं होंगे, ठीक है? तो उनके लिए रजी अल्लाह तआला कैसे लिख दिया? इसका जवाब तो आप देंगे, उनके लिए कैसे रजी अल्लाह तआला लिखा?
लफ्जी मानो तो बहुत इम्पोर्टेंट
लफ्जी मानों पे गौर करते हुए, या अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से जवाब तो बता दिया वैसे मैंने, उसी जवाब के रोशनी में ही ये वाला जवाब भी आप दे सकते हैं। इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु कैसे? हालांकि वो साहबी तो नहीं, राइट?
सुनो सर।
जैसे जैद, सईद बिन जैद जिनका भी जिक्र हो रहा है, तो सईद रहता तो हैं अशरा मुबशरा में से, लेकिन उनके वालिद जो जैद हैं, तो उनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया ना कि वो भी जन्नत में है, ठीक है? तो उनके लिए भी रजी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि रजात अल्लाह ताला की रजा के साथ ही कोई जन्नत में जा सकता है, उसके बगैर तो जन्नत में जा सकता। तो उसी तरीके से इमाम मेहदी कौन है? आप जवाब दे रहे हैं या पूछ रहे हैं?
तो
वो बिल्कुल तौहीद पे था, अभी उनके बारे में काफी तफसील पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जी ने बयान फरमाई है। तो जो इमाम मेहदी है ना, वो कौन होंगे? वो वही होंगे ना, मेहदी का मतलब क्या होता है? हिदायत के ऊपर। उनका नाम मेहदी नहीं होगा, उनका नाम क्या होगा? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये उनका नाम होगा, ठीक है? हदीस से पता चलता है। तो मेहदी तो उनका टाइटल है, मेहदी का मतलब क्या? जो हिदायत पर है। किसने बताया कि जो हिदायत पर है? किसने बताया ये बात? नबी अलैहिस्सलाम ने बताई ना, ठीक है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब कह दिया कि वो हिदायत पर हैं, तो फिर कोई डाउट रह गया कि वो हिदायत पे नहीं होंगे? भाई इमाम मेहदी होंगे ही वो शख्स जो कि हिदायत पर होंगे, जो हिदायत पर नहीं होंगे ना वो इमाम मेहदी नहीं होंगे, चाहे वो अपने आप को मेहदी मेहदी मेहदी बोलना शुरू कर दे, है? वो मेहदी नहीं बनेगा अपने आप को मेहदी बोलने से ना, ठीक है? मेहदी तो वही शख्स होगा जो कि हिदायत के ऊपर हो, ठीक है? तो इस वजह से उनके लिए रजी अल्लाह तआला अन्हु लिख देना कोई मुश्किल बात नहीं, ठीक है? कि जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि वो हिदायत पर हैं और उन्होंने मुसलमानों को लीड करना है, तो फिर क्या उसके अंदर शक रह गया। ठीक है, नाम तो नहीं लिया ना नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह से कि यानी हम ये तो, हम नबी अलैहिस्सलाम ने तो बता दिया ना, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं उनके बारे में हम किसी शख्स की तरफ पॉइंट करके तो नहीं कह रहे कि ये रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये रजी अल्लाह तआला अन्हु, राइट? क्योंकि हमें तो नहीं पता किसी के बारे में, लेकिन जिसका नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि वो मेहदी हैं तो फिर जो भी होंगे वो, राइट? हमें नहीं पता वो कौन होंगे, नाम वाम पता है लेकिन ये नहीं पता ना कि वो ये मोहम्मद होंगे। बहुत सारे माशाल्लाह मोहम्मद इधर बैठे हुए हैं, इनमें से कौन मेहदी होंगे हम ये तो नहीं कह रहे, ठीक है? लेकिन जो होंगे तो वो हिदायत पर ही होंगे, तो अब उनके लिए जो वो होंगे के लिए रजी अल्लाह तआला अन्हु कह देना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? उसी वजह से मुफ्ती साहब ने उनके लिए रजी अल्लाह तआला अन्हु लिखा। अच्छा, तो हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है, तो इनका तआरुफ हजरत ने फरमाया कि अशरा मुबशरा में सबसे आखिरी बुजुर्ग हजरत सईद बिन जैद है। ठीक है, अब आखिरी बुजुर्ग हजरत ने फरमाया, लेकिन जिक्र हम 9वें नंबर पे कर रहे हैं इसका, इनका।
इनसे
इनसे छोटे हों तो नहीं, लेकिन दरजात के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो बेहतर जिन जरा जो है वो बड़े आते हैं, ठीक है, ज्यादा सीनियर और ज्यादा जो है वो बड़े साहबी आते हैं। इनको 9वें नंबर पे रहने की रखने की शायद ये वजह हो कि जो हदीस अभी आपके सामने पढ़ी गई थी ना, उस हदीस में ये 9वें नंबर पे थे, ठीक है? तो नबी अलैहिस्सलाम का तस्करा जो है वो 9वें नंबर पे किया है, ठीक है? लेकिन वैसे अगर आप सहाबा के दर्जात को देखें तो अबू उबैदा बिन जर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु वो ज्यादा बुजुर्ग सहाबी नजर आते हैं इनके मुकाबले में।
तो खिलाफत
जी बिल्कुल, तो यानी इतने सीनियर के नबी अलैहिस्सलाम की खिलाफत के तौर पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने किन दो को प्रपोज किया? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू उबैदा बिन जर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु। और फिर जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत की कमेटी बनाई थी कि 6 लोगों में से कोई एक खलीफा बने, तो उसमें भी अबू उबैदा बिन जर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे, ठीक है? और उनके द्वारा भी उनके बड़े फजाइल हैं जो कि हम जब उनकी बारी आएगी तो फिर हम पढ़ेंगे। तो सईद बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं ये 10वें या आखिरी अगर फरमाया तो इसकी शायद वजह यह है कि ये इतने कोई मशहूर सहाबी नहीं है। आम तौर पे जिनका नाम लिया जाता है, लोग जिनके नामों से वाकिफ होते हैं ना, तो उनमें सईद बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु का तस्करा नहीं आता। अवामुन नास में अगर हम कहें कि अवामुन नास में ये इतने मशहूर नहीं है, ठीक है? अवामुन नास में क्यों मशहूर नहीं है ये भी चले आप बता दें, उसकी वजह वैसे आगे आ रही है लेक्चर के अंदर। अवामुन नास में इतने मशहूर क्यों नहीं है? क्योंकि अवामुन नास जो है ना वो एक्शन ड्रिवन होते हैं ना, फैटिंग फैटिंग इसमें फैटिंग ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से अच्छी फिल्म नहीं है। और जमाने जाहिलियत की बातें हैं ये कि वो जिसके अंदर बातें होती थी ना, कहते हैं यार ये बातें बेकार हैं, तो मैं क्या बोरियत है सारी बोर बात है, फैटिंग नहीं है इसके अंदर कोई, तो अवाम जो है ना वो फैटिंग से ज्यादा इंप्रेस होते हैं ना, तो इनकी फैटिंग के बारे में बहुत ज्यादा बातें कोई मशहूर नहीं है, ठीक है? खालिद बिन वली रज़ियल्लाहु अन्हु की फाइटिंग के बारे में बहुत ज्यादा मशहूर है, खालिद बिन रज़ियल्लाहु अन्हु को नौजवान बहुत पसंद करते हैं, अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात। तो इनके बारे में ऐसी बातें मशहूर नहीं है, ये जरा एक खामोश से एक जरा बैकड्रॉप पे रहने वाले इस तरह के ये सहाबी नजर आते हैं, ठीक है? तो ये उन खुश नसीब हजरात में से हैं जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने नाम लेकर के जन्नत की बशारत अता फरमाई थी। अच्छा, इनके वालिद का नाम जो है वो, अच्छा इनका अपना नाम तो सईद हो गया ना, लेकिन इनकी कुनियत बड़ी अजीब सी है। कुनियत कहते हैं ना अबू अबू मोहम्मद, अबू फलाना, अबू फलाना, तो इनकी कुनियत जो थी वो अबुल आवर थी। अबुल आवर, आवर का मतलब एनीवन, अबुल आवर। तो आवर जो है ये लफ्ज सुनकर के किसी को कुछ और याद आता है? आवर, आवर का लफ्ज एक और के लिए बहुत मशहूर है। कल हम बात कर रहे थे कि इसका इतना जिक्र करो, इतना जिक्र करो कि ये दिमागों पर छा जाए, सही है? तो इस वजह से इसका जिक्र करना भी बड़ा जरूरी है यहाँ पर। आवर जो है ना ये कहते हैं काने को, काना काना, वन आइड, ठीक है? तो कौन है वन आइड या कौन होगा वन आइड? दज्जाल, काना दज्जाल, ठीक है। तो उसके लिए भी अरबी के अंदर आवर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। तो इनकी जो कुनियत थी वो अबुल आवर थी, अब किसी वजह से इनको लोगों ने अबुल आवर कहना शुरू कर दिया, अल्लाह आलम, ठीक है ना। इनके बेटे का तो कोई ऐसा जिक्र नहीं आता कि उनकी एक आंख खराब थी, दूसरी आंख ठीक थी, या कोई और वजह होगी। कभी किसी क्वालिटी की वजह से भी किसी को कोई कुनियत दे दी जाती है ना, जैसे अबू तुराब अली रतान को, तो तुराब अली रतान के बेटे का नाम तो नहीं था, सही है, तुराब तो मिट्टी को कहते हैं, तो उनके साथ मिट्टी का एक वाक्य मशहूर है, तो इस वजह से उनको नबी अलैहिस्सलाम ने अबू तुराब फरमाया। अच्छा, तो इनका नाम सईद और कुनियत अबुल आवर, सही है। अच्छा, वालिद का नाम जैद और दादा का नाम अमर बिन नुफैल था, और वालिदा का नाम फातिमा बिनते बाजा, ठीक है। वालिद का नाम तो सईद बिन जैद, ठीक है, और दादा का नाम भी लिखा हुआ है, वालदा का नाम भी लिखा हुआ है। कुरैश की मारूफ शाख बनु अदी से इनका ताल्लुक था, और आपकी वालदा का ताल्लुक बनु खुजा से था, ठीक है। अच्छा, ये थे कुरैश के ही, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कुरैशी थे, इसका मतलब क्या हुआ कि इनका कहीं ना कहीं ताल्लुक नबी अलैहिस्सलाम के शजर नसब से जाकर के ऊपर मिलता था, ठीक है। तो इनका ताल्लुक ऊपर जाके नबी अलैहिस्सलाम से कहाँ जाके जुड़ता था, वो जुड़ता था काब बिन लुवई के, काब बिन लुवई। नबी अलैहिस्सलाम का शजरा किसी को थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा बहुत, दो तीन चार जनरेशन, जी फरहान,
अच्छा अच्छा अच्छा
हाशिम बिन,
अच्छा
हाशिम बिन अब्द मुनाफ, ठीक है, बिन अब्दुल मुतालिब, बिन हाशिम, बिन अब्द मुनाफ, बिन कुसई, बिन किलाब, बिन मुर्रा, और बिन काब बिन लुवई बिन गालिब, ठीक है। तो काब जो था ना, ये यहां पे जाकर के इनका भी एंसेस्ट्री और नबी अलैहिस्सलाम के एंसेस्ट्री जा करके कंबाइन हो जाती थी, ठीक है। तो काब बिन लुबई पर, अच्छा, और ये एक इम्पॉर्टेंट बात इनके लिए ये थी कि सईद बिन जैद रतान जो हैं, ये उमर फारूक रतान के भी करीबी रिश्तेदार थे। वो किस तरह से, कि उमर फारूक रतान जो थे ना, वो इनके वालिद के चचाजात कजन थे, फर्स्ट कजन थे, यानी उमर रतान वॉज लाइक हिज हिज चचा, इनके वालिद के चचाजात कजन, ठीक है, चचाजात भाई। तो उमर फारूक रतान इनके इस तरह से कजन चचा बने, कजन चचा कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी रिश्तेदारी क्या थी इनकी उमर रतान के साथ, कि उमर रतान की जो सगी बहन थी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, ठीक है, उनकी शादी हजरत सईद बिन जैद रतान के साथ हुई है। तो फातिमा रतान जो थी अनहा, वो उमर रतान की बहन थी। तो उमर रतान के वालिद का नाम क्या था, खप्पाब, ठीक है। तो फातिमा भी बिनते खत्ताब थी, फातिमा बिनते खत्ताब की शादी जैद सईद बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हुई थी, ठीक है। तो ये दोनों मियाँ बीवी थे, और ये दोनों जो है ना, वो एक साथ इस्लाम में दाखिल हुए थे, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लेकर के आए थे। अच्छा, आपके वालिद,
करना के
हाँ, वो आगे आएगा इंशाल्लाह, उनके ईमान लाने का जो बात है, तो मैं इससे इसी तरीके से चलता हूँ जिस पे हजरत जी ने इसको चलाया है। तो अब जो है ना, इनके बाकी बातें बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले जो है वो इनके वालिद साहब की कुछ खूबियां हजरत जी ने बयान फरमाई। तो वालिद साहब बहुत अहम शख्सियत हैं इनके, जैद यानी, तो हजरत सईद अतान के वालिद हजरत जैद उन सआदतमंद बुजुर्गों में से थे जो जमाने जाहिलियत में भी तौहीद परस्त थे, ठीक है। तौहीद परस्त थे का मतलब के शिर्क नहीं करते थे, ठीक है, बुतों की पूजा नहीं करते थे, और गुनाहों से भी पाक थे, गुनाह भी कोई और भी गुनाह वगैरह नहीं करते थे। ये भी यानी झूठ बोल देना कि भाई तौहीद तो है लेकिन झूठ के साथ साथ बोल रहे हैं, तौहीद तो है लेकिन जो है ना वो लोगों को धोखा भी देना, ये भी करें, नहीं, गुनाह भी नहीं करते थे, और शिर्क वाला जो सबसे बड़ा गुनाह होता है वो भी नहीं करते थे। आपसे पूछ रहे थे,
इंटर्नशिप
हाँ ये भी आ रहा है इंशाल्लाह। तो अब ना ये इतना ख्याल रखते थे कि इवन ये मुशरिकीन का जो जबीहा होता था वो भी नहीं खाते थे, क्योंकि मुशरिकीन जब अपने जानवरों को ज़बह करते थे ना, तो जिस तरह हम बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह करके जानवर को ज़बिया करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया इस तरीके से, ठीक है। तो मुशरिकीन जो है वो लात या मनात या उज्जा उनके नाम के ऊपर जानवरों को ज़बह करते थे, ठीक है। तो ये जानवर को ज़बह करने की एक खास एक रिवायत रही है हमेशा कि किसी ना किसी के ना नाम के ऊपर जानवर को ज़बह किया जाता है, या तो अल्लाह के नाम पे ज़बह करेंगे जो तौहीद परस्त हैं, और जो तौहीद परस्त नहीं हैं तो वो जिन माबूदों से मोहब्बत करते हैं ना, तो वो उन माबूदों के जो झूठे माबूद होते हैं उनके उनके नाम के ऊपर वो जानवर, भाई बगैर नाम लिए ज़बह कर दो, ठीक है। तो ये नहीं होता था पहले कि बगैर नाम लिए किसी की ज़बह नहीं करते थे, बल्कि किसी ना किसी का नाम लेना ज़रूरी है, ठीक है। आजकल के दौर के अंदर जो बज़ाहिर नज़र आता है कि अमेरिका के अंदर जो एनिमल स्लॉटर हो रहा है, यूरोप के अंदर एनिमल स्लॉटर हो रहा है, तो उसके अंदर जो है वो कोई किसी का नाम नहीं लिया जा रहा, तो उसकी वजह यह है कि अब जो है ना लोग ये एथियस्ट ज़्यादा हो गए, और वैसे भी मशीन स्लॉटर होते तो मशीन तो नहीं नाम लेगी ना किसी का वैसे भी तो इस वजह से बगैर किसी नाम वाम के आजकल दबाव हो रहा था, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं होता। पहले हमेशा किसी ना किसी सच्चे माबूद जो अल्लाह ताला है या झूठे माबूद के नाम पर जानवर को दबा किया जा रहा होता था। जी
बगैर
बगैर किसी नाम के जरिया नहीं, अगर मुसलमान ने किया और वो उसने नाम पढ़ा नहीं तो फिर तो वो हलाल है, ठीक है। मुसलमान कर रहा है वो भूल गया पढ़ना, ठीक है, तो लेकिन वो मुसलमान के साथ है, लेकिन अगर वो गैर मुस्लिम कर रहा है तो उसका हलाल नहीं होगा। जी ये नहीं कि वो एक लंबी बहस है, वो मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ उसके अंदर बड़ी सारी चीजें हैं कि वो बिस्मिल्लाह कह के बटन दबाया या ये क्या है वो क्या है वो, लेकिन अब यहाँ पर जो सुना है वो ये है कि वो बकायदा छुरी पकड़ा के खड़े किए हुए होते हैं, वो बिस्मिल्लाह करके ना वो आ रहा होता है मशीन से ही, लेकिन पकड़ करके ऐसे कर रहे होते हैं बिस्मिल्लाह, सुना है ना, पर ये इस तरह से। अच्छा लेकिन इसमें खैर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं कि अक्सर असल में क्या हो रहा है और वाकई में कहा क्या जा रहा है। अच्छा तो ये जो है ना मुशरिकीन का ज़बीहा नहीं खाते थे, हत्ता कि एक मौके पर नबी अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत से पहले ही नबी अलैहिस्सलाम से इनकी मुलाकात हुई, वादिये बल्दह एक जगह थी मक्का मुकरमा के बाहर, वहां पे मुलाकात हुई, तो नबी अलैहिस्सलाम के सामने गोश्त वगैरह खाने के लिए पेश किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार फरमा दिया कि नहीं मैं इस गोश्त में से नहीं खाऊंगा, ठीक है। और जब इनके सामने पेश किया गया तो इन्होंने भी इनकार कर, तो नबी अलैहिस्सलाम इनके साथ वहां पे इकट्ठे थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को उस वक्त तक वही नाजिल ही नहीं हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, ठीक है, तो ये उससे पहले की बात है। जी
वाक्यात सुनकर ऐसा अंदाजा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले शिर्क काफी कॉमन था, जैसे वो अपने छोटे खुदाओं की कसम करता था।
जी
तो उस जमाने में जो कुछ जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बड़े हवा तो उनका इतनी आसानी से किसी का जबीहा ना मतलब ऐसा ही जैसा एक तरह से इजहार नफरत है, तो उन्हें सोसाइटी से कोई मतलब वो मिलता होगा कोई शायद मतलब सोसाइटी के जो मुशरिक लोग होते हैं उन लोगों को नापसंद करते इजहार।
ज़ाहिर है किसी का खाना ना खाना जो है वो एक एक एक ऐलान तो होता है कि हाँ भाई हम आपसे ज़रा डिफरेंट हैं, हम आपसे एग्री नहीं करते, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा नहीं थे ना। वरका बिन नौफिल जो ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के जो कज़न थे, वरका बिन नौफिल, वो एक उनका नाम आता है, एक जो है वो इनका नाम आता है, ठीक है, और आप के आबाओ अजदाद में तो नहीं नाम आता है, वो बहुत ऊपर जाके जब शिर्क आया ही नहीं था उस वक्त तो थे मुवाहिद थे तौहीद पर थे, लेकिन बाद में तो नहीं थे ना, ठीक है। तो अब वो इज्जत की वजह से जैसे अबू तालिब हैं तो उनका नाम इज्जत की वजह से, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करते थे, आप उनको सपोर्ट करते थे, तो इस वजह से, लेकिन मुसलमान होने का तो नहीं है, ठीक है, तो थे तो वो शिर्क के ऊपर ही। और नबी अलैहिस्सलाम के वालिद का भी यही है ना कि वो तो बाद में मुसलमान आए ना, नबी अलैहिस्सलाम की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने जो है वो माँ बाप दोनों को उठाया, दोनों को, ठीक है, और फिर उनको कलमा पढ़ाया, फिर उसके बाद जो है उन, तो क्या मतलब पहले नहीं थे ना, जिंदगी तो नहीं थी तौहीद के ऊपर, और उसके बाद उसी हालत में इंतकाल हुआ।
जैद रतान
जैद रतान, सईद रतान मुहाजिर बने ना, जैद रतान तो मक्का मुकरमा में इंतकाल हो गया, नबी अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली नहीं थी उस वक्त, ठीक है, तो मक्का मुकरमा में पैदा हुए, वहीं पे इंतकाल हो गया इनका, ठीक है। तो वादी बल्दा में ये वाला वाक़या पेश आया, तो जैद रतान मुशरिकाना अकायद से खुद भी एतराज़ फरमाते थे और दूसरों को भी मना करते थे, ठीक है ना, जिनके साथ जो है वो बातचीत हुई, यानी बाकायदा खुल करके इस तरीके से जो है दावत तो तबलीग का काम नहीं, लेकिन लोगों को जो है वो मना किया करते थे कि तुम ये क्या कर रहे हो ना। तो चुनाचे उन्होंने अल्लाह की वहदानियत के ऊपर बहुत से अशार भी लिखे, और हजरत जी ने फिर उनका एक अशार यहाँ पे नकल भी फरमाया। चार मिसरों का ये शेर है, लेकिन हजरत जी दो मिसरे जो है वो उसके अक्सर पढ़ा करते थे अपने बयान के अंदर, जो आपने शायद साजिश से भी सुने हो। तो उन्होंने एक शेर लिखा, बड़ा जबरदस्त शेर है, अ रब्बन वाहिदन अम अल्फा रब्बिन, आ आ का मतलब होता है क्या, हमजा इस्तिफामिया, ठीक है, इज जैसे इंग्लिश में कहते हैं इज, रब्बन वाहिदन एक रब, अम अल्फा रब्बिन या हजार रब, एक रब या हजार रब, अदीनु इजा तकस्समतिल उमूरु, अ दीनु इजा तकस्समतिल उमूरु, यानी मुतफर्रिक उमूर। इसको ट्रांसलेट हजरत जी ने भी एक्चुअली किया नहीं है, हजरत अपने समझ के मुताबिक आपको उसको समझाने की कोशिश करेगा, कि गोया के फरमा रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अ रिलीजन इज दिस, अदीनो क्या दीन भाई है, जब तुम्हारे मामलात जो हैं, तुम्हारे उमूर, हम उर्दू में कहते हैं ना तुम्हारे मैटर्स, अंग्रेजी में मैटर्स कहते हैं, उर्दू में उमूर कहते हैं, जब तुम्हारे उमूर जो हैं वो इतने स्कैटर्ड हैं, इतने मुंतशिर हैं, इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ दीन इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ अ रिलीजन इज दिस, ठीक है, तो क्या एक रब ज्यादा अच्छा है या हजार रब ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। फिर आगे फरमाते हैं, तरकतुल्लात अवल उज्जा जमिया, जो आप पूछ रहे थे ना, तरकतुल्लात अवल उज्जा जमिया, मैंने तो लात और उज्जा सबको छोड़ दिया, कदालिका रजुलुल, कदालिका यफअलुर रजुलुल रशीदु, ऐसे ही जो भी सीधा बंदा होता है ना वो ऐसे ही करता है, या जो बसारत वाला, यहाँ पर बसीर का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ, कि जो रजुलुल बसीर होता है वो ऐसे ही काम करता है, यानी जो कल आयत में क्या पढ़ा था कि जिसने बसायर को देखा तो उसने अपने अपना फायदा किया, वमन अमिया फअलैहा, और जो अंधा बना रहा यानी उसने नहीं देखा चीजों को, इग्नोर किया, तो उसके अपना नुकसान है, किसी दूसरे का नुकसान नहीं, ठीक है। तो ये फरमाते हैं कि भाई हर रजुलुल बसीर जो है ना, जो अपनी आंखों का इस्तेमाल करता है, गौर करता है, सोचता है, वो ऐसे ही करता है, वो शिर्क नहीं करता, वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहता, ठीक है, वो फोकस्ड रहता है, फोकस्ड, ठीक है। अच्छा, जब इनको किसी नबी ने आकर के बताया ही नहीं था कि अल्लाह एक है और किसी और की इबादत नहीं की जा सकती, तो फिर इनको ये बात कैसे पता चल गई कि शिर्क नहीं करना चाहिए, इनको कैसे बात पता चल गई कि शिर्क नहीं करना चाहिए और ये लोग सारा गलत करते हैं वगैरह, जी आप बताइए एग्जैक्टली, बल्कि यही इसका जवाब है, ठीक है, क्योंकि इंसान की अल्लाह ताला ने जो इनेट नेचर बनाई है ना, जो फितरत बनाई है, वो तौहीद ही है, वो यकसुई ही है, ठीक है, फितरत इंसान की यकसुई है, फितरत इंसान की तौहीद है। तो अब जब वो डिस्ट्रैक्ट होता है तब ये तौहीद उसकी फितरत में कम होती है या खत्म होती है, खराब हो जाती है, ठीक है, वरना उसकी असल नेचर तो फितरत ही, ठीक है। तो इस वजह से अगर कोई ऐसा शख्स हो कि जिसकी सारी जिंदगी कभी भी कभी किसी नबी से मुलाकात नहीं हुई, किसी नबी ने उसको इस्लाम के बारे में बताया ही नहीं, ठीक है, तो अब उस शख्स के साथ कयामत के अंदर क्या मामला होगा? ये बहुत कॉमन सा सवाल है जो कि बहुत सारे नौजवान भी करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसका जवाब कि जिस शख्स तक कभी कोई दीन इस्लाम की दावत पहुंची ही नहीं, ठीक है, ना किसी नबी ने उसको कुछ बताया, ना किसी नबी के स्टूडेंट ने उसको कुछ बताया, ना सहाबी कोई, ना कोई मुसलमान पहुंचा, ना कोई और चीज पहुंची, तो अब उसके साथ मरने के बाद उसके साथ क्या मामला होगा? आप बता,
अच्छा
कोई ऐसा बंदा है ही नहीं। नहीं, ऐसा बंदा हो सकता है, ठीक है। इफ अ मुस्लिम डिलिबरेटली डजंट टेक अल्लाहज नेम देन आल्सो मीट इज नॉट हलाल। अच्छा, इन्होंने एक फिकी मसला यहाँ पे लिख दिया था कि डिलिबरेटली अगर कोई मुसलमान ना कहे ना अल्लाह का नाम, ठीक है, तो उस वक्त भी मीट हलाल नहीं होगा, लेकिन भूल जाने के ऊपर मीट हलाल होता है, ठीक है, जो बात हुई थी भूल जाने के ऊपर। हाँ, तो ऐसे ऐसे लोग हो सकते हैं दुनिया के अंदर, सही। कोई ऐसी कौम नहीं हो सकती कि जिस तक जो है वो हिदायत का मैसेज ना पहुंचा, लेकिन उस कौम के अंदर कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसकी कभी किसी से मुलाकात नहीं हो रही है और जिसका कुछ पता नहीं चल रहा, तो उस तक हिदायत का मैसेज नहीं पहुंचा, तो उसके साथ क्या होगा?
क्यों नहीं सीख गए, क्या ही देखते हैं।
नहीं, उसका हिसाब जो है ना वो सिर्फ तौहीद की बुनियाद पर होगा, ठीक है, कि अगर उसने शिर्क किया तो फिर तो उसकी बख्शिश नहीं होगी, वो जहन्नुम के अंदर ही जाएगा। लेकिन अगर उसने शिर्क नहीं किया, ठीक है, बल्कि तौहीद के बस रब तो एक ही है, खालिक और मालिक तो एक ही है, ठीक है, अगर इसी हालत में उसकी मौत आ गई लेकिन उसको और कुछ भी नहीं पता था, ना उसको नमाज का पता था, ना उसको रोजे का पता था, ना उसको जो है वो इवन फरिश्तों का भी उसको पता नहीं था, ठीक है, उसको बाकी किसी भी चीज का पता नहीं था, लेकिन उसने शिर्क नहीं किया अल्लाह ताला के साथ, तो उसकी बख्शिश हो जाएगी, वो जन्नत में चला जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ यही है कि तौहीद इज द ओनली थिंग जो कि अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में गूंध दी है। कभी आटा गूंधा है अम्मी के साथ? आटा गूंधते हैं ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा कभी नमक भी मिला देते हैं, नमक, तो अब जब नमक जो होता है ना वो आटे के अंदर शामिल हो जाता है, वो उसके अंदर मिक्स हो जाता है, उसको आप अलग नहीं कर सकते, तो उसको कहते हैं कि आपने आटे के साथ नमक को गूंध दिया, इट्स पार्ट ऑफ आटा, ठीक है, इट हैज बिकम पार्ट ऑफ आटा। उसी तरीके से तौहीद जो है ना ये इंसान की फितरत के अंदर गूंधी हुई है, अल्लाह ताला ने क्रिएट ही ऐसे किया है, ठीक है। अब जो शख्स भी तौहीद के खिलाफ जा करके शिर्क करता है ना, तो वो दरअसल अपनी फितरत के खिलाफ जा रहा होता है, ठीक है, इस वजह से अल्लाह ताला उसकी मगफरत नहीं करेंगे। बाकी और कोई मसला नहीं, ठीक है। हाँ, जब कोई मैसेज पहुंच गया दलील के साथ उसके पास और अब वो उसका इनकार कर रहा है कि नहीं, मैं तो बस तौहीद पर हूं और मैंने नई बात बाकी मैंने कोई बात नहीं मानी, ठीक है ना, तो उसको फिर सजा मिलेगी। उस वक्त खाली तौहीद नहीं चलेगी, बल्कि उस वक्त जो है ना फिर बाकी चीजें भी माननी, रसूल के ऊपर ईमान लाना भी उसकी जिम्मेदारी बन गया, क्योंकि रसूल का मैसेज पहुंच गया ना उसके उसके पास, तब रसूल पर ईमान लाना उसके लिए कंपलसरी हो गया। लेकिन अगर उसको रसूल का पता ही नहीं चला तो रसूल के ऊपर ईमान लाना उसके लिए कंपलसरी नहीं है, अगर उसको पता नहीं चला किसी भी रसूल के बारे में, लेकिन अल्लाह के बारे में पता उसको चले ही चला, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी नॉलेज जो है वो उसके खमीर के अंदर, उसकी फितरत के अंदर मिक्स करके ही उसको पैदा किया, ठीक है। रसूल की नॉलेज मिक्स करके पैदा नहीं किया अल्लाह ताला ने, ये बात समझ लें ताकि थोड़ी और क्लियर हो जाए ना बात। ये नहीं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में जितने लोग दुनिया में पैदा हुए उनके खमीर के अंदर, उनकी फितरत के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम गूंधा हुआ है, अब जो है ना वो उनके लिए लाजिम है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लेकर के आए, अब उनको पूरी दुनिया में सर्च करना पड़ेगा इब्राहिम किधर है, इब्राहिम किधर है, इब्राहिम किधर है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम फितरत के अंदर गूंधा हुआ होता तो फिर क्या होता कि जो पैदा हो रहा है और उसकी फितरत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम है, ही विल हैव टू गो एंड लुक फॉर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम किधर है, इब्राहिम किधर है, मुझे मिले ताकि मैं उन पर ईमान लाऊं, फिर मैं उनसे शरीयत सीखूंगा, ठीक है ना। और अगर उसने तलाश नहीं किया होता तो फिर उसको सजा मिलती कि भाई तुमने क्यों इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तलाश नहीं किया। बात समझ आ रही है? नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में जितने लोग पैदा हो रहे हैं सबके फितरत के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह बूंदा हुआ है। अब उनकी जिम्मेदारी क्या बन जाएगी, क्योंकि फितरत में है ना, अब दे विल हैव टू लुक फॉर मोहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं, फितरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं, ठीक है? तो इस वजह से अगर उन तक मैसेज नहीं पहुंचा, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, किस चीज के रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर नहीं आई जी मोहम्मद, कि रसूल को जाके ढूंढने, ठीक है ना? उनके ऊपर, रसूल के ऊपर ईमान लाना की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर नहीं आई। बात समझ में आ रही है? लेकिन जी,
ऐसे इंसान बस पुराने नहीं थे में सही तो फिर उसके ऊपर
हाँ, ईसा अलैहि सलाम के ऊपर ईमान लाना उसके ऊपर लाजिम होगा, क्योंकि वो नॉलेज उस तक अल्लाह ने पहुंचा दी है, ठीक है? लेकिन ईसा अल्लाह के बेटा वाला नहीं ईसा अलैहि सलाम की नॉलेज पहुंच गई तो आप कह रहे हैं ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के बेटे हैं, नहीं, ये तो शिर्क हो गया ना, ठीक है? तो उसको तो शिर्क की वजह से जहन्नुम, ठीक है? उसको ईसा अलैहि सलाम पर ईमान लाना लाजिम होगा, लेकिन तौहीद के साथ, क्योंकि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नॉलेज उस तक नहीं अल्लाह ताला ने पहुंचाई, ठीक है? तो नॉलेज खुद नहीं पहुंचती ना, नॉलेज तो अल्लाह ताला पहुंचाते हैं ना। अब अल्लाह ने नहीं पहुंचाई, लेकिन अल्लाह ने अपनी नॉलेज पहुंचा दी ना हर एक के पास, ठीक है? अल्लाह ने अपनी नॉलेज हर एक के पास पहुंचा दी, इसी वजह से अल्लाह ताला ने तौहीद को जो है वो हर इंसान के ऊपर फर्ज कर दिया, तौहीद, ठीक है? तो अब ये जो थे ये दीन फितरत के ऊपर थे, उसी को दीन हनीफ भी कहा जाता है, दीन हनीफ, ठीक है? 4:15 पर हमने टाइम देखा और इसी वक्त में क्लास खत्म भी कर देते हैं, ये चैप्टर, ये पैराग्राफ मुकम्मल कर लेते हैं बस, कि इन्होंने ये जो रब्बन वाहिदन अम अल्फ रब्बिन अदीनु इदा तकसमतिल उमूरु तरक्तुल्लाह वल्उज्जा जमीआ कदालिक यफअलुर रजुलुल बसीरु, मैं अकेले रब को मानूं या हजारों माबूदों को मानूं, जबकि मुआमलात बट जाएंगे इस तरीके से तो है, किस किस की मैं इबादत करता फिरूंगा, इस तरह तो मेरा मामला बढ़ जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, मैंने लात और उज्जा वगैरह सब कुछ छोड़ दिया और तौहीद इख्तियार कर ली। समझदार इंसान ऐसे ही करता है, आप अंदाजा लगाएं कि वो कैसे पक्के मुवाहिद थे और शिर्क से नफरत करने वाले थे, ताहम ये नबी अलैहिस्सलाम की बेअसत तक जिंदा नहीं रह सके और आपके ऐलान नबूवत से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए, ठीक है? इसका फिर मजीद वाक़ हम इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। बस एक नसीहत के साथ ये बात खत्म करते हैं कि देखें, अल्लाह ने हमारी फितरत के अंदर फोकस बनाया है, तो अब जो हमारा दुश्मन है उसकी सारी की सारी मेहनत क्या होती है, फोकस को खत्म करना, ठीक है? हमें डिस्ट्रैक्ट करना, हमें जो है वो मुंतशिर करना। अब वो उसके लिए जो भी तरीका इस्तेमाल कर सकता है वो करता है। आजकल उसने सेलफोन और इंटरनेट को जो है ना वो उसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ है इंसानों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो जो भी जो है ना वो इंटरनेट और सेलफोन्स के जरिए से डिस्ट्रैक्ट होता है तो फिर वो अपनी फितरत के खिलाफ जा रहा होता है, ठीक है? तौहीद ये नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुख्तलिफ किस्म के एफर्ट्स कर नहीं सकते। देखिए अल्लाह ताला सूरह लैल है ना, सूरह लैल में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, कसम खा करके, वल्लैली इज़ा यग्शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला, ठीक है? अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं लैल की और फिर नहार की, वमा खलकल खलकल ज़कर वल उन्था, और जिसने के ज़कर और उन्था को यानी मर्दों और औरतों को पैदा किया, लसअयकुम लशत्ता, कि तुम्हारी जो मेहनतें हैं ना ये तो मुख्तलिफ मुख्तलिफ हैं, ठीक है? मर्द जो है वो मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं, औरतों को जो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरीके से काम करना सिखाया। जो मैथमेटिकली ज्यादा जीनियस होते हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं, जो जो इंटेलेक्चुअली दूसरे एकेडमिकली ज्यादा जीनियस होते हैं वो दूसरे तरीके, यानी मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने लोगों को मुख्तलिफ बनाया, तो हर कोई मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरीके से काम करता है। ठीक है, तो क्या इसको डिस्ट्रैक्शन कहेंगे, क्या इसको इंतशार कहेंगे? नहीं, ये इंतशार नहीं है। लोग मुख्तलिफ तरीकों से काम करेंगे, बल्कि एक बंदा भी मुख्तलिफ तरीकों से काम कर सकता है, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है। डिस्ट्रैक्शन क्या है कि
गोल को लिखा है तरीका, कोई गोल को अचीव कर ले तो स्ट्रैटेजी।
ठीक है, मुख्तलिफ काम करना जो है ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बल्कि डिस्ट्रैक्शन क्या है कि मुख्तलिफ नियतों से काम किया जाए, और तौहीद क्या है, सिर्फ एक के लिए काम किया जाए, एक ही के लिए काम किया जाए, और वो कौन है? सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के सिवा और कोई एक नहीं है, सब मल्टीपल हैं। ठीक है, अल्लाह सिर्फ एक है, तो जो भी करो, जितने भी काम करो, जितने भी एफर्ट्स करो, जितने भी तरीके से तुम मेहनतें करो, वो तो तुम करोगे, तुम्हारी नेचर में अल्लाह ताला, इन्ना सायकुम लशत्ता, बट योर फोकस शुड ऑलवेज बी अल्लाह, नो वन एल्स। ठीक है, अल्लाह के लिए और किसी और के लिए नहीं। तो ये असल में अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं, यानी ये फितरत नरिश भी की जा सकती है और करप्ट भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है, फितरत का यही मामला है कि फितरत को आप नरिश कर सकते हैं और फितरत को आप करप्ट कर सकते हैं। ये इख्तियार अल्लाह ताला ने हमें दे करके इस दुनिया के अंदर भेजा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बहुत फोकस वाला बनाए और डिस्ट्रैक्शन से हम सब की, खुसूसन हमारे नई नस्लों की, आने वाले नस्लों की हिफाजत फरमाए, ताकि वो काम के मोमिन बन सकें, काम के मुसलमान बन सकें, नाम के खाली मुसलमान ना रह जाएं, काम के मुसलमान बने। ठीक है, जी
और मुसलमान तो भी मुसलमान नाम
उसने जवाब ही आपको ऐसे दिया कि मैं मुसलमान, मैं मुसलमान हूं, तो यानी बड़ा उसने हकीकत को मान लिया, एडमिट कर लिया अपने।
जबान में रुक लग रहा है,
अच्छा, इस वजह से। अच्छा,
रख लगा
लेकिन ये तो एक वो हो गया, क्या कहते हैं इसको, जजाकअल्लाह साहब, आप तो दावाना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नमाज का वक्त शायद अभी दाखिल हो गया।
शाम 6 मिनट
अच्छा, तो पहले नमाज पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं।